أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ ہماری یہ گفتگو پچھلی چند مباحث کا جو ہے تسلسل ہے انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہلکا سا آپ کو ایٹ اے گلانس اس کا ریویو کر دیں اور پھر ہم اپنے آگے کی ابحاث کو مکمل کر سکیں دیکھیں ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے سامنے مختلف نظریات اور مختلف جہان بینی ہوتی ہے جہان بینی ہم کہتے ہیں کہ یعنی اس کے سامنے کچھ از اور ایزنٹ ہوتے ہیں کچھ چیزیں اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہیں اور کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نہیں ہیں اسی طرح سے کچھ چیزیں اس کے پاس ڈوز ہوتی ہیں اور کچھ ڈونٹس ہوتی ہیں ہم نے بھی اس کائنات میں آنکھ کھولی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے کوئی نبی نہیں آئے تھے یہ قرآن کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے ہمیں اس دنیا میں ختم ہونا ہے آگے کی کوئی دنیا نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بنانے والا ہے اس کائنات کا بھی کوئی بنانے والا ہے ہمیں اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا میں جانا ہے ہمارا جو ہے وے آف لائف مشخص ہونا چاہیے بس از اور ازمس کے درمیان ہم واقع ہیں اسی طرح کچھ ڈوز اور ڈونٹس ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادانہ زندگی گزارنی چاہیے ہمیں صرف اپنی جو ہے وہ فائدے کو دیکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے جس میں میرا فائدہ ہو رہا ہے بس مجھے یہ دیکھنا چاہیے نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میرا فائدہ نہیں ہمیں معاشرے کو دیکھنا چاہیے اگر ہمارے کسی عمل سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے اب پہلے والا صحیح ہے یا دوسرے والا صحیح ہے کچھ لوگ اس سے بھی آگے کہتے ہیں نہیں ہمیں جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں خلق کرنے والا وہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے جن عمل سے وہ خوش ہے وہ کرنے چاہیے جن سے خوش نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں بس یہ سوالات ہیں ہمارے سامنے کچھ جہان بینی ہے کچھ نظریات ہیں ہمارے سامنے اور ہم اس کے بیچ میں قرار پائیں اب ہمارے پاس اور اسی نظریات اور جہان بینی کو جب ہم جمع کرتے تو وہ بنتے ہیں اسکول آف تھاٹس مکاتب فکر اب ہمارے سامنے مختلف مکاتب فکر ہیں اب ایک مکتب فکر ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس لیے ایک مکتب فکر ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں حقیقی نالج دوں گا حقیقی انفارمیشن دوں گا یہ جو معلومات تم لے رہے ہو یہ سپرفیشل ہے اس کے اندر کچھ اور لیئرس ہیں اگر ان لیئرس تک جانا ہے کائنات کی حقیقت تک جانا ہے واقعیت تک جانا ہے تو میرے پاس آنا پڑے گا دین اسلام کے پاس آنا پڑے گا اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں حقیقی سکون چاہیے حقیقی لذت چاہیے تو میرے احکام پر عمل کرنا پڑے گا تم ایک آئیڈیل کی تلاش میں ہو تمہیں اگر ریئل آئیڈیل چاہیے وہ میرے پاس ہے تم اگر چاہتے ہو معاشرے میں عدالت کو قائم کرو عدالت اس وقت تک معاشرے میں قائم نہیں کر سکو گے جب تک کہ میرے اصول کو معاشرے میں کار فرما نہیں کرو گے اگر تم چاہتے ہو حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو تمام قید و بند سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ میرے پاس وہ نسخہ ہے جو میں تمہیں ہر چیز سے آزاد کر دوں گا اور اگر تم واقع حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ اس مکتب فکر کا نام ہے اسلام اب ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ अगर कोई बहुत ही अहम चीज़ों का दावा करे, यानी दावा तो समझ में आता है आपको, इद्दा करे, ठीक, चैलेंज करे कि अगर मेरे पास आओगे तो मैं, एक मिसाल से मैं समझाता हूँ, मसलन बाज़ दफ़ा चीज़ों का एहतमाल परसेंटेज बहुत कम होती है, लेकिन मोहतमल जिस चीज़ का एहतमाल होता है वो बहुत कवी होता है, ठीक है, तो हम उस पर तवज्जो देते हैं। मसलन एक छोटा बच्चा, एक 10-11 साल का बच्चा यहाँ आए, कहे इस बिल्डिंग में क्या है, इस बिल्डिंग में एक बॉम्ब रखा हुआ है, हम क्या कहेंगे? उसूलन बच्चे की बातों को हम तवज्जो नहीं करते, बच्चे 10 बातें करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बॉम्ब की बात कर रहा है और इसका बहुत बड़ा नुकसान है तो हम इसकी तरफ तवज्जो करेंगे। बस अगर इन तमाम चीज़ों का एहतमाल हम कहें बहुत ही मिनिमम है, 5% भी नहीं है, लेकिन इसका मोहतमल इतना कवी है, मोहतमल इतना कवी है कि आवाज़ सही थी, आवाज़ आप लोग को आ रही थी ना? हाँ, अब बेहतर है। अच्छा, बस अगर कुछ चीज़ों की सही होने का एहतमाल परसेंटेज बहुत कम ही हो, लेकिन अगर उसका मोहतमल बहुत कवी होता है तो हम उस पर तवज्जो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे ओटी में हम जो है ना बहुत केयर करते हैं कि कहीं से कोई बैक्टीरिया नहीं आ जाए, अतः हाथ धोने का भी ख़ास तरीका है, हम यूँ नहीं धोएंगे, यूँ हाथ धोएंगे, ठीक है, ताकि हम जरासीम से महफूज रहें। अब 0.001% चांस है कि यूँ हाथ धोने से जरासीम आ जाए, लेकिन क्योंकि वो जगह ऑपरेशन थिएटर की जगह है, वहाँ पे अगर एक छोटा सा भी बैक्टीरिया हुआ तो मरीज़ जो है उसकी सर्जरी सही नहीं होगी, तो हम इतने छोटे से एहतमाल के लिए इतनी सारी जो है वो एहतियातें करते हैं। ओटी में आपको जो लोग डॉक्टर हजरात पता है कितनी एहतियात की जाती है। अब अगर हम वजू में कह दें कि इस तरीके से हाथ धोना है, इस तरीके से मुंह धोना है, और अगर यूं धोया तो सही नहीं है, तो लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, अगर खुदा को हमसे आमाल ही कबूल करना है, हम कैसी भी नमाज पढ़ लें, कैसा भी वजू कर लें, नहीं, वहाँ पर भी एहतियातें हैं। बस अगर हमारे पास किसी चीज़ का, हम फॉर एग्जांपल ये जो जितने अंबिया आए हैं, जो शरीयत लेकर आए हैं, उन्होंने ये सारे दावे किए हैं कि अगर तुम सही कामयाबी हासिल करना चाहते हो, दूसरी दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, हकीकी मानों में आज़ाद होना चाहते हो, हकीकी मानों में लज्जत और सुकून हासिल करना चाहते हो, तो हमारे मकतब फ़िक्र पर अमल करो। इसका अगर परसेंटेज बहुत कम भी हो, लेकिन इसका मोहतमल बहुत कड़ी है, यानी इसके नुकसान होने का ज़रर बहुत बड़ा है कि हम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जा सकते हैं अगर हमने इस पर अमल नहीं किया। हमारी ज़िंदगी पूरी यहाँ की तबाह बर्बाद हो सकती है, हमारा सुकून लज्जत बे आराम ज़िंदगी हो सकती है। बस हमारी अक्ल कहती है कि इस छोटे से एहतमाल को ही सही, हमें इस पर एतना करना चाहिए कि ये मकतब फ़िक्र क्या कहता है। तो अब देखते हैं, हम इस मकतब फ़िक्र में एंटर होते हैं और इससे पूछते हैं कि ये मकतब फ़िक्र क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। हो, अब ये मकतब फ़िक्र जो है, जिसका नाम इस्लाम है, वो कहता है कि सबसे पहले मेरे अकायद जानो। वो अकायद क्या है? वो अकायद हैं तौहीद, नबुवत, इमामत, क़यामत, अदल। तो लिहाजा जब हम इस मकतब फ़िक्र में जाएंगे तो ये मकतब फ़िक्र कहता है मेरा मरकज़, मेरा महवर क्या है? तौहीद है। लिहाजा आपको तौहीद को समझना होगा, और जब हमने तौहीद समझ लिया तो हमें दीन की बुनियाद और बेस समझ में आ जाएगी, और फिर उसके आगे हम आगे चीज़ें समझेंगे कि फिर तौहीद के बाद खुदा ने जो है अपनी हिदायत के लिए خاص بندے بھیجے ہیں، نبوت، انہوں نے شریعتیں لے کر آئے ہیں، ان شریعت کی پابندی ہمیں کرنی ہے، اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بس لہٰذا اس مکتب فکر کا سب سے بنیادی جو محور اور مرکز ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اب ہم توحید کے دلائل دیکھتے ہیں کہ آیا یہ مکتب فکر جو کہتا ہے کہ خدا ہے اور خدا ایک ہے، واقعاً عقل اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، اس کے دلائل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس علم کے یہ تین ذرائع، اور بھی زیادہ ذرائع ہیں لیکن فعلاً جو ہے کیونکہ ہم ابھی پہلے عقائد کے پہلے اسٹیج کو پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم ابھی تین ذرائع کو بیان کرتے ہیں۔ ایک حواس خمسہ ہے، فائیو سینسز ہے، جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زبان سے چکھتے ہیں۔ اس لیے ایک عقل ہے اور ایک قلب ہے۔ قلب انشاءاللہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ عقل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عقل والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عقل کیا ہے، تو وہ عقل کو محسوس کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قلب ایک اسپیشل ذریعہ معلومات ہے، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس کو دل کہا جاتا ہے، روح کہا جاتا ہے، قلب کہا جاتا ہے۔ یہ مکتب فکر دین اسلام اس کو روشناس کراتا ہے کہ یہ بھی علم حاصل کرنے کا، نالج حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ کیسے، اس کو ہم ڈیٹیل میں بتائیں۔ اب ہم ان تینوں کے ذریعے سے ایک ایک دلیل خدا کے وجود پر ثابت کریں گے۔ جو حواس خمسہ سے دلیل ہے اس کو ہم کہتے ہیں دلیل نظم۔ اب کیونکہ پہلے بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے تو ہم اس کو بالکل ایک ریویژن کے تحت اس کو لے کر چلیں گے، اور پھر اگر کچھ کمی رہ گئی تو آپ لوگ سوالات میں اس کو کر سکتے ہیں۔ دلیل نظم، کیونکہ ہمیں آگے وجوب امکان کو زیادہ وقت دینا ہے، اس لیے نظم یعنی آرگنائزیشن۔ آرگنائزیشن کس کو کہتے ہیں؟ آرگنائزیشن کہتے ہیں چند اجزاء کو ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کر دیں اس طریقے سے کہ وہ ایک ہدف دے سکیں۔ اس کی مثال گھڑی کے مثلاً پارٹس کی دیتے ہیں، وہ پہلے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سسٹم نہیں ہے۔ جب اس کو ہم ملاتے ہیں، اس طریقے سے آپس میں ملاتے ہیں کہ وہ صحیح وقت دے سکیں، اس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن اور سسٹم۔ دلیل نظم کیا ہے؟ دلیل نظم یہ کہ اس کائنات میں منظم مجموعے ہیں۔ ہم جب اس کائنات پر غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ایٹم سے لے کر اس پوری گیلیکسی تک ہر ایک میں سسٹمز نظر آتے ہیں۔ سسٹمز کا مطلب کیا ہے؟ تین چیزیں ہونی چاہیے سسٹم میں: پارٹس، کوآرڈینیشن بٹوین دا پارٹس، اور ایک گول، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایک ایٹم کو لے لیں تو اس کے مخصوص پروٹون ہیں، نیوٹرون ہیں، الیکٹرون ہیں۔ الیکٹرون ایک خاص فاصلے پر ہے، تب جا کے وہ ایک خاص ایلیمنٹ بن پاتا ہے، صحیح۔ اور اسی طریقے سے ہم سولر سسٹم کو لے لیں، اور نہ فقط یہ سسٹم، مثلا نائٹروجن سائیکل، یہ خود ایک سسٹم ہے۔ ایکولوجی میں کہتے ہیں کہ بہت سارے سسٹمس ہیں، خود ہماری باڈی میں دسیوں سسٹمس ہیں کہ جو اپنے اپنے طور پر چل رہے ہیں۔ بس ہم اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں سسٹمس موجود ہیں، آرگنائزڈ اسٹرکچرس موجود ہیں۔ یہ پہلا مقدمہ ہو گیا۔ جب بھی ہم کوئی آرگنائز اسٹرکچر دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ آرگنائزر کی طرف جاتا ہے، یہ ہے دلیل نظم۔ جب ہم اس کلاس روم میں آئے، ہم نے دیکھا کہ چیئرس خاص ترتیب سے لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیچر کی خاص جگہ ہے، جو ہے وہ مائک کی خاص جگہ ہے، ویڈیو کی خاص جگہ ہے، اس کو کسی نے ترتیب دیا ہے۔ ایسے بغیر اس کے ترتیب دینے والے کے یہ ترتیب نہیں آتا۔ اس کی مثال بہت ساری، جیسے لائبریری میں ہم جاتے ہیں، ہر سبجیکٹ کی کتاب اس کے خاص خانے میں لگی ہوئی۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ لائبریری ایسی वो जो खादिम था या जो चौकीदार था उसने किताबें ऐसे डंप करी और ये ऑर्गेनाइज हो गई। कोई मानेगा इसको? कोई नहीं मानेगा, ठीक है। तो इसलिए पहला मुकदमा इस दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड मजमूए हैं, और ऑर्गेनाइज्ड मजमूए जो है वो बनाने वाले की तरफ हमें मुतवज्जे तवज्जो दिलाता है, लिहाजा इस कायनात का भी कोई बनाने वाला ज़रूर है। इसके हाशिए में अभी बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं करेंगे। सिर्फ एक बात मैं कह दूँ कि असलन साइंस और टेक्नोलॉजी की इर्तिका और उसका इतना कामयाबी से सफ़र करना एक सपोजिशन पर मुक्तनी है। और वो सपोजिशन, वो सपोज्ड चीज़ क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि इस कायनात में ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो हम तहकीक करके उसके रूल्स निकालते हैं। अगर इस कायनात में जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद ना हो तो फिर हम किसकी तहकीक करेंगे, सही। बस इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी तहकीक साइंस और टेक्नोलॉजी कर रही है, अगर उसके पहले ये सपोजिशन ना हो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मजमूए हैं, तब तक वो साइंस और टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप भी नहीं लिया जा सकता। और जब ऑर्गेनाइज्ड मजमूए हैं तो फिर उसका कोई ऑर्गेनाइज करने वाला भी है। आप और मुझ में से कोई भी इस बात को कबूल नहीं करेगा कि मसलन यहाँ पर एक चिड़िया की तस्वीर हो, या खुद ये चीज़ जो लिखी हुई है, मैं ये कहूँ कि मेरा बच्चा जो है वो ऐसे ही कीबोर्ड टाइप कर, ऐसे कीबोर्ड्स के बटन दबा रहा था और ये दलील नज़्म उसने टाइप कर दी, आप मानेंगे? कोई मानेगा? कोई बाशऊर आकिल मानेगा? आप कहेंगे ये किसी समझदार शख्स ने, जो के दलील नज़्म को जानता था, उसने ये लिखा है, उसने ये टाइपिंग की है। बस अगर किसी चीज़ में नज़्म है, जैसे इसमें नज़्म है कि पहला मुकदमा दिया हुआ है, दूसरा मुकदमा दिया गया है, उसके बाद एक नतीजा दिया गया है, ये बग़ैर किसी बाशऊर नज़्म देने वाले के ये मुनज़्ज़म मजमूआ नहीं आ सकता। और इसी से हम ये पहली दलील देते हैं खुदा के होने पर। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसको फिर कभी बयान करेंगे। दूसरी दलील जो है उसको हम कहते हैं दलील फितरत, जो कि रूह कल्ब हमारी एतराफ करती है उसको, ठीक है। अब असल में जो चीज़ इस दलील को हिस करती है, महसूस करती है, वो हमारी रूह है। तो हम इस पे अकली दलील नहीं दे सकते, अकल इसके असरात देखती है फकत। मैं आपको बताता हूँ ये दलील फितरत क्या है इंशाल्लाह। फितरत किस चीज़ को कहते हैं? फितरत कहते हैं कि जिस चीज़ के साथ हम पैदा हुए, जिन सिफात के साथ, जिन खसूसियात के साथ हम पैदा हुए हैं, उसको फितरत कहते हैं। जैसे हमें भूख लगती है, ये फितरी अमल है, ठीक है। या और बहुत सारी दस्यु चीज़ें, माँ जो है वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ये फितरी चीज़ है। इसकी निशानी क्या होती है? निशानी होती है कि कहीं एजुकेट नहीं की जाती, वालिदैन को किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता कि आपको बच्चों को चाहना है, प्यार करना है, ठीक है। वो एक उनके पास एक नेचुरल दी हुई चीज़ है। दीन कहता है कि जिस तरीके से ये नेचुरल चीज़ें हैं, हमें भूख लगती है, हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, इसी तरीके से आप खुदा को जानते हैं। हम कहते हैं आप दावा कर रहे हैं, आप इद्दा कर रहे हैं कि आप खुदा को जानते हैं, हमें तो कहीं महसूस नहीं हो रहा, हमें तो कहीं पता नहीं चलता खुदा है। तो दीन कहता है हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पता चलता है कि दीन है। कुरान में कई मकामात पर ये आयतें हैं और बहुत हिला देने वाली आयतें हैं ये। और वो क्या है कि जब हम मुश्किलात में फंसते हैं, जब हमारे पास मादी असबाब मुनकता हो जाते हैं, तब खुद ब खुद, कोई हमको आके नहीं बताता, खुद ब खुद हम एक ज़ात को की तरफ मुतवज्जे होते हैं। वो ज़ात खुदा की ज़ात है। अब इसकी हम मिसालें दे सकते हैं, ये अगर किसी पर ये वक्त नहीं पड़ा तो वो महसूस नहीं कर सकेगा। जिस पर ये वक्त पड़ा है, जिस पर ऐसी मुश्किल पड़ी है, मसलन हम स्टूडेंट्स को मिसाल देते हैं, एग्ज़ाम के आखिरी घंटे, जब एग्ज़ाम के आखिरी रात होती है या चंद घंटे रह जाते हैं, उस वक्त हम कितने खुदा से नज़दीक होते हैं, क्योंकि हमें पता है अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है, जितनी मेहनत होनी थी हो गई, लेकिन अभी भी महसूस करते हैं कि नहीं, हम में ताकत नहीं है, और उस वक्त मुतवज्जे होते हैं। ये तवज्जो से हमें क्या पता लगता है, इसका मतलब ये है कि ये मादी दुनिया हमें खुदा की तवज्जो हटा देती है। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल है कि मैं रोज़ाना 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करता हूँ, इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ इस मादी दुनिया से है। ये मादी हमारी जो रूह है ना, रूह वो इस दुनिया के लिए नहीं बनी, वो उस दुनिया के लिए बनी है। जैसे परिंदे को परिंदा बना है आसमानों के लिए, उसको कफसे में, उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए, ये पिंजरा है, ये दुनिया पिंजरा है हमारे लिए। अब ये दुनिया और इस दुनिया की चीज़ें और इस दुनिया से लगावट हमारी खुदा की मारिफत को, खुदा की पहचान को कम कर देता है। जैसे ही हम इस दुनिया की चीज़ों को कट ऑफ करते हैं, हम उस खुदा से मुतवज्जे हो जाते हैं। वो आपने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दहरिये का वाक़या सबने सुना हुआ है, ठीक है ना, कि वो कहता है मैं तो खुदा को नहीं पहचानता, मैं तो कहते हैं इमाम पूछते हैं तुम क्या काम करते हैं, कहता है मैं मल्ला हूँ, कश्ती चलाता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ कि चारों तरफ से कश्ती फंस गई और तुम चारों तरफ से भंवर में आ गए और अब कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है? बोला हाँ ऐसा हुआ। क्या उस वक्त तुम्हें कोई किसी हस्ती की तरफ जाते हो तुम कि वो बचाएगा तुमको? ये चीज़ें जो है ना, ये प्रैक्टिस करने वाली हैं, ये बयान करने वाली नहीं है। मुझे एक शख्स मिला, कहने लगा हम लोग बैंकॉक की फ़्लाइट से कराची आ रहे थे, ठीक है, अब फ्लाइट में ना सब ऐशो नोश में लगे हुए थे, ठीक है, एकदम से ऐलान हुआ कॉकपिट से कि भाई इंजन ख़राब हो गया है, इमरजेंसी लैंडिंग होगी, पता नहीं जहाज़ बचता है या नहीं बचता। था सब मसलन हिंदुओं ने अपनी किताब खोल ली, क्रिश्चियनों ने बाइबल खोल ली, मुसलमान जो है अपने खुदा को, सब खुदा को पुकारने लगे बगैर इस्तस्ना। ये क्या है? ये है दलील फितरत कि जब इंसान, जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप उसके घर वालों को देखें कि वो कैसे नमाज पर आ जाते हैं खुद, कैसे उनका गिरिया हो जाता है, कैसे दुआओं में कैसे रिक्कत आ जाती है। जब हम पे मुश्किलात पड़ती हैं तो हमारी दुआएं और होती हैं आसानियों के दिन। इसलिए हदीस में है कि खुदा को फकत मुश्किलात में ना पुकारो, अच्छे दिनों में भी याद करो उसको। तो ये हमारी फितरत है कि जब इस दुनिया में ज़्यादा जाती है तो उसकी वो मारफत कम हो जाती है। कुरान है ना, ये अकली दलाइल नहीं देना चाहता, दलील वजू को इम्कान नहीं समझाना चाहता, वो आसान रास्ते से आता है, कहते तुम खुद जानते हो खुदा को, पहचानते हो, जैसे जैसे मछली को पूछा जाए पानी क्या है, नहीं बता सकती। ये ओलहा कहते हैं वाजदहा के कुछ चीजें धुंधली होने की वजह से मालूम नहीं होती, मजहूल होती है। बहुत कोई चीज दूर है, मुझे नहीं पता लग रहा वो गाड़ी है, इंसान है, क्या चीज है, दूरी की वजह ना, वाजे ना होने की वजह से। कुछ चीजें बहुत वाजे होने की वजह से नहीं पता चलती, ऐसा पता है आपको? हमें इस अंगूठे के फवायद नहीं पता, इतना हम डेली यूज करते हैं इसको, हमें नहीं पता। जब ये काम से हटता है तब पता लगता है कहाँ कहाँ ये काम में आता था। ठीक, तो ये है दलील फितरत कि जब इंसान इस पैदाइशी तौर पर खुदा के साथ, खुदा की मार्फत के साथ पैदा हुआ है, लेकिन इस दुनिया की रंगीनियाँ, इस दुनिया की मादियात उसकी इस मालूमात को कम कर देती है। और वो मालूमात ऐसी नहीं है जो बहुत फेक हो, बहुत वाज़े है। कई कबार मतलब आप देखें सूरज को आप कुछ देर तक देखें तो फिर अंधेरा सा आ जाता है। बात चीज़ें बहुत रोशन होने की वजह से वाज़े नहीं होती। जैसे मछली से पूछा जाए कि पानी क्या है, तो खुदा इतना वाज़े है, हमें क्या करना है, हमें मादियात से थोड़ी देर के लिए कट ऑफ होना है। जैसे ही हम, इसलिए ये दीन के जो जितने भी रिचुअल सिस्टम्स, जो प्रैक्टिकल सिस्टम है, रोजे रखो साल में एक दफा, ये मादियात से कट ऑफ करने के लिए। दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ो, यानी हम पूरे दिन तो अपनी रूटीन में रहें, 5 दफा कट ऑफ हो। जिंदगी में एक दफा हज करो, अपनी पूरी जिंदगी से कट ऑफ होकर जाके उसकी बारगाह में जाओ। ये सब क्या है, ये सब आपको मादियात से थोड़ी देर के लिए कट ऑफ करना है, ताकि आपकी वो मारफत वाजे हो सके, रोशन हो सके। और खुदा ना खास्ता, खुदा ये भी दीन ये नहीं चाहता कि हम कट ऑफ कर दें। कभी कभार जब हम ये दर्स देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के जहन में जा रहा है कि बस ये मादियात बुरी हैं, ठीक है ना, ऑफिस जाना, पैसे कमाना, ठीक है, अच्छा घर रखना, अच्छा लिबास पहनना बुरा है। नहीं, बुरा नहीं है, इनमें भी खुदा को याद रखो, इनमें खो नहीं जाओ, इनको यूज करो फॉर द टेम्पररी पर्पस। याद रखो कि ये टेम्पररी है, ये घर छिन जाने वाला है जो इतना अच्छा हमने बनाया है, ये गाड़ी बिलाखिर छोड़ देने वाला, जो चीज़ हमारे साथ रहेगी हमारे आमाल है और खुदा की मार पर। बस ये दलील फितरत है। एक और पोर्शन भी है इसका, वो इंशाल्लाह फिर कभी आपको बयान करेंगे। तीसरी दलील जो है, बस हमने अक्ल से तीन मालूमात के तीन ज़राए आपको बताए गए थे, हवास खमसा जिससे हमने दलील नज़्म को साबित किया, कल्ब और रूह या दिल जिससे हमने दलील फितरत को वाज़े किया, और तीसरी अक्ल है, और ये दलील वजूब इम्कान है। अब ये दलील वजूब इम्कान, क्योंकि आप लोग, मैंने सुना है कि पहले भी पढ़ चुके हैं, तो क्योंकि शायद एक थोड़ा सा रिवीजन इसका ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी मुश्किल है। दलील वजूब इम्कान क्या है, अब इसकी बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज इसमें, वजूब किसको कहते हैं, इम्कान किसको कहते हैं, इम्तना किसको कहते हैं, हम इस टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाते और समझने की कोशिश करते हैं कि दलील वजूब इम्कान क्या है। सपोजिशन हमारा ये कि हम सिर्फ अक्ल से बात करेंगे और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ अक्ल, सिर्फ अक्ल। वो क्या है, वो ये है कि कायनात में हमारे सामने चीज़ें हैं, ये ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर, ये लैपटॉप है, माइक्रोफोन है, हर शय, कोई भी चीज़, ये कुर्सी, ये टेबल, ये प्रोजेक्टर, अकली लिहाज से दो दो ही ऑप्शन है, या इसका कोई बनाने वाला है या इसका बनाने वाला नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्यूट, तीसरा ऑप्शन अकली लिहाज से हो ही नहीं सकता, जिसकी इल्लत नहीं होगी, ठीक है, तो फिर उसकी इल्लत है नहीं, यानी या तो इल्लत है या इल्लत नहीं है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। इस गिलास का या कोई बनाने वाला है या कोई बनाने वाला नहीं है, बस दो ही ऑप्शन है कायनात की हर शय का, मेरा कोई बनाने वाला है या नहीं। जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं तो अकली तौर पर तीन पॉसिबिलिटीज उससे इमर्ज करती हैं। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, मसलन हमारी क्लास में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, अगर हम आपको सिर्फ दो ऑप्शंस दें कि या आपने ब्लू कलर के कपड़े पहन कर आने हैं या मसलन ग्रीन कलर के कपड़े पहन कर आने, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, या ब्लू या ग्रीन, तो अकली लिहाज से क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी, या सब के सब ब्लू पहन कर आ जाएंगे, या सब के सब ग्रीन पहन कर आ जाएंगे, या कुछ ब्लू पहनेंगे कुछ ग्रीन पहनेंगे, कोई चौथा ऑप्शन नहीं है, ठीक। जब हमने हर चीज का कहा है, हर चीज की या इल्लत है या नहीं है, 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 अब इन सब चीजों को जब हम कंबाइन लेंगे तो तीन ही अकली तौर पर पॉसिबिलिटीज, या तो मजमूअन पूरी कायनात, मजमूअन पूरी कायनात की या इल्लत नहीं है, या मजमूअन पूरी कायनात की हर हर शय की इल्लत है, या इस कायनात में कुछ चीजों की इल्लतें हैं, कुछ चीजें खुद से हैं, कोई चौथी पॉसिबिलिटी अकली लिहाज से महाल है, ठीक है। बस पहला मुकदमा ये हो गया कि किसी भी शय की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या इल्लत है या इल्लत नहीं है। जब हम पूरी कायनात को मजमूई तौर पर लेंगे तो या सबके सबकी इल्लत है या सबके सबकी इल्लत नहीं है, या कुछ की इल्लत है कुछ की इल्लत नहीं है। अब देखते हैं इन तीन पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकल सही तौर पे कायनात में नजर आती है। चौथी पॉसिबिलिटी अकलन महाल है, कोई चौथा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तीन ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है? सबकी इल्लत नहीं है, हर शय की इल्लत नहीं है, ये तो हम बिल बिदाहा बदीही तौर पर देखते हैं, बदीही तौर पर यानी हाँ ऑब्वियसली देखते हैं कि मसलन इस ग्लास को किसी कंपनी ने बनाया है, इस लैपटॉप को किसी कंपनी ने बनाया है, मैं अपने वालिदैन से पैदा हुआ हूँ, इसी तरह हजारहा चीज़ें जो हैं वो उनकी इल्लतें हैं। बस पहला ऑप्शन तो जो है इम्प्रैक्टिकल। अब दूसरा ऑप्शन जिस पे बहुत बात की गई है कि सबकी इल्लत है, यानी कायनात में अगर एक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इल्लत है, यही हमारा जो सपोजिशन है यही है ना कि 100% चीज़ों की इल्लत है। ये भी महाल है, क्यों महाल है? ये इसलिए महाल है कि इसमें इन्फिनिटी आ जाएगी, तसलसल आ जाएगा, और तसलसल अकली तौर पर महाल है। तसलसल का मतलब ये है, मसलन मुझे कहेंगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से आया, मेरे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स, वो उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स। अब इस ऑप्शन के तहत इसको रुकना नहीं चाहिए, हज़रत आदम पे रुकना नहीं चाहिए, بلکہ اور پیچھے جاتے رہنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں کہ علتوں کا میں تسلسل, کبھی کبھار معلول میں بھی تسلسل ہوتا ہے, علتوں میں تسلسل. یہ محال ہے. کیوں محال ہے؟ اس لیے محال ہے کہ پھر کسی کو بھی وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کو شاید بات کر, اگر ہم فار ایگزامپل ایک تسلسل ہے, ٹھیک ہے نا, اور کسی بھی آبجیکٹ پر ہم ہاتھ رکھیں گے کہیں گے یہ کسی اور کی وجہ سے خلق ہوا, تو کسی کو بھی خلق نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ پہلے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تسلسل, ایک صلوات پڑھیں محمد والوں. دیکھیں اگر جو ہے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو, تسلسل کس کو کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل یہ آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں اس کی علت ہے. اس کی علت کون ہے؟ یہ ہے. یہ بھی آبجیکٹ ہے, اس کی علت یہ ہے, اس کی علت یہ ہے. اور کیا ہے یہ؟ یہ کیا ہے؟ انفینیٹی پہ, یعنی یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تو اصولاً اس کو کیا ہے, اس پورے سلسلے کو وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا, کیونکہ ہم جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے آپ کہیں گے اس کو یہ پیچھے والے پر پیش کرتا ہے. اس کو ہم ایک مثال کے تھرو بھی سمجھاتے ہیں. جیسے آپ کی کلاس میں مثلاً اس کلاس کو ہم کہیں کہ یہ پہلا اسٹوڈنٹ اس وقت کلاس سے باہر جائے گا جب سیکنڈ اسٹوڈنٹ جائے, اگر یہ نہیں جائے گا تو یہ نہیں جا سکتا. آپ کہیں گے یہ کب جا سکتا ہے؟ میں کہوں گا یہ اس وقت جائے گا جب تھرڈ اسٹوڈنٹ جائے گا. تھرڈ اسٹوڈنٹ کب جائے گا؟ فورتھ, پھر یہ ہم آخری اسٹوڈنٹ تک پہنچ جائیں. اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں سے باہر گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فرسٹ اسٹوڈنٹ تھا وہ خود سے باہر گیا. اگر وہ بھی کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوتا تو سب کو یہیں بیٹھے رہنا تھا. جیسے ہرڈل ریس ہوتی ہے نا, پہلا والا خود سے اسٹارٹ لیتا ہے, پھر وہ اسٹک پاس کرتا ہے, پھر اسٹک پاس کرتا ہے, پھر اسٹک پاس کرتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پہلا والا ہے ہی نہیں, سب دوسروں سے اسٹک لے رہے ہیں, تو سب کو کھڑے رہنا چاہیے, کسی کو بھاگنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی خود سے نہیں بھاگ سکتا, جو بھی بھاگے گا دوسرے سے اسٹک لے گا. بس کم سے کم کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کائنات میں کہ جس کی علت نہ ہو, جس کا وجود خود سے ہو. اگر نہیں ہوگا تو کسی کو بھی وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ ہے دلیل وجوب و امکان. تھوڑی سی مشکل ہے, تھوڑی سی آسان ہے. ہو بس جب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ پاسبلٹی مانیں کہ ہر چیز کی علت نہیں ہے, یہ تو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزوں کی علت ہے, اکثر چیزوں کی علتیں ہیں. دوسری پاسبلٹی یہ کہ نہیں, سب کی علت نہیں, سب کی علت ہے تو اس میں تسلسل آئے گا, اور اگر تسلسل ہوتا تو کسی کو بھی وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا, کیونکہ جو بھی وجود میں آتا آپ کہتے ہیں کہ اس کے پہلے والا, اس پہ ہاتھ رکھیں گے اس سے پہلے والا, اس سے ہاتھ رکھیں گے اس سے پہلے والا. اور سپوز یہ کہ یہ کہیں نہیں رکتا, اس پورے سسٹم میں ایک بھی آبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو خود سے وجود میں آیا ہو, تو پھر کسی کو بھی وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا. پس جب یہ دونوں پاسبلٹیز محال ثابت ہو جاتی ہے تو ایک ہی پاسبلٹی رہ جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بالآخر اس کائنات میں, ابھی ہم یہ ثابت نہیں کر رہے کہ وہ بغیر علت کے آبجیکٹس ایک ہیں, چند ہیں, دس ہیں, ہزار ہیں, ابھی اس پہ بات نہیں کر رہے, وہ صفات پر بات آئے گی. کم سے کم کچھ آبجیکٹس کو, کچھ اشیاء کو, کچھ شے کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کی علت نہیں ہے. ہاں وہ میں نے, کیونکہ قرار ہے کہ میں تفصیلات کم بیان کروں, ورنہ وہاں پہ دور بھی آ سکتا تھا, لیکن زیادہ تر جو ہمارا ذہن معمولاً تسلسل کی طرف جاتا ہے, कि मैं मेरे पेरेंट्स से आया, मेरे पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स से, शायद ये हमेशा से चल रहा है सिलसिला। हाँ, दौर जो है जहन में नहीं आता, वो दौर भी जाहिर रखे वो असली तौर पर वहाँ आता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग खुदा के मुनकर हैं, जो मादा परस्त हैं, वो भी मानते हैं कि कोई एक शय है, कोई एक शय है जो खुद से है। अब वो मसलन मादा परस्त कहते हैं कि मादा था अज अव्वल, मादा खुद से था, बाकी फिर तसलसल शुरू हुआ, मादे की कोई इल्लत नहीं है। ठीक है, हम वहीं पे उसको पकड़ लेते हैं कि हर जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, या मैं कोई ड्राइंग बनाता हूँ, या मैं कुछ लिखता हूँ, वो मेरी खसूसियात को वाजे करता है। इस कायनात का जो, इस कायनात में जो दिक्कतें हैं, इस कायनात में जो बहुत ज़्यादा, इस कायनात में हुस्न है, इस कायनात में गहराई है, उम्क है, वो एक बेशऊर मादे से जन्म नहीं ले सकती, बेशऊर शय से बाशऊर शय वजूद में नहीं आ सकती। जो जिसने खुद ये दलील वजूब इम्कान ना पढ़ी हो, वो आपको पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। बस जिस मादे में खुद शऊर नहीं है, वो दूसरे को शऊर दे सकता है? वो अनबिया जैसे हस्तियों को पैदा कर सकता है? वो एक ऐसे इंसान को पैदा कर सकता है जिसके पास इल्म की दौलत हो? नहीं पैदा कर सकता। बस ये है दलील वजूब इम्कान। अब इस दलील वजूब इम्कान से सिफात का दरवाज़ा शुरू होता है। इंशाल्लाह उसको जो है हम अपने अगले लेक्चर में रखेंगे। यहाँ पे पिछले हमारे दुरूस इस बात पर ख़त्म हुए थे कि दीन की ज़रूरत क्या है। तकरीबन 3-4 लेक्चर्स में हमने ये साबित किया था कि बिलाखिर दीन की ज़रूरत है हमें, और फिर उसके बाद हमने यहाँ से सिलसिले को शुरू किया कि अब हमें दीन को जानना चाहिए, और दीन का मरकज़ तौहीद है। तौहीद पे हमने 3 दलाइल से तौहीद से खुदा को साबित किया। अब खुदा की वो शय कि जिसकी कोई इल्लत नहीं है, उसकी सिफात क्या है? आया वो इल्म रखता है, आया वो कुदरत रखता है, आया वो कब से है, आया वो कब तक रहेगा, ये सब सिफात बाद में साबित होती है। وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين। आप लोगों के सवालात हों तो वो।
ये एक बंदे के को जो मामला है वो ऐसे मिला है कि ना वो उस चीज़ का भान ही नहीं कर पाता है, तो अब वो वहाँ बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर पर पर्दे आ गए हों, जितने पर्दे लगे हैं उसकी वो स्ट्रक्चर, तो हम बोलते हैं कि भाई एक मुसलमान ने जो तस्वीर उसने कुछ किया शौक था या शौक के लिए, आप फिर उसको जो लोगों को दिखाता तस्वीर देने में उसके जा एक तो वो कह सकता है वो एक माना कि मैं रोक रहा हूँ एक उस पर कहते हैं एक और मुसलमान जो भी मुझे मान बंदा पैसे में डर पाए मुसलमान को रमजान नहीं मिल गया, ठीक है, इस तरह का आशूर हो गया।
रास्ते हैं मौजूद हैं, उनके लिए भी रास्ते हैं, जब वो उन पे मुश्किलात आती हैं, जब वो परेशानियों में फंसते हैं, घिरते हैं, तो वो भी एक ज़ात की तरफ मुतवज्जे होते हैं। दूसरी बात ये है कि खुदा ने हर एक को अक्ल की दौलत दी है, ठीक है, फिर उसकी फितरत, उसका कल्ब, उसकी रूह मुर्दा हो जाती है। लेकिन अक्ल खुदा ने दी है कि हर कोई ये सोचता है मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे मर जाना है यहीं पर। ये एक मुल्हिद भी सोचता है, एक मादा परस भी सोचता है, एक वो शख्स जो सिर्फ दुनियावी कामों में लगा हुआ है सुबह से शाम तक, लेकिन कभी ना कभी उसको ये ख्याल गुजरते हैं मेरा कोई बनाने वाला है, मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो क्या। हर इंसान जब सुबह होती है और काम करना शुरू करता है तो उसके सामने ऑप्शंस होते हैं, मैं इस फॉर्म में भी जा सकता हूँ, इसमें भी जा सकता हूँ, मैं इससे भी दोस्ती कर सकता हूँ, इससे भी दोस्ती कर सकता हूँ, मैं अपना टाइम इधर भी पास कर सकता हूँ, उधर भी गुजार सकता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस होते हैं, अकल कहती है कि इस पर तहकीक करो क्या चीज़ सही है, बेतहकीक चीज़ें नहीं करो, ये तो उसकी अकल भी कहती है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि उस माशरे से भी लोग निकलते हैं और बहुत आगे तक का सफ़र करते हैं। और ऐसा हाँ, इम्कानात कम हैं, इम्कानात कम हो जाते हैं, चांसेस कम हो जाते हैं एक ऐसा माशरा के जहाँ हर कोई दुनियादारी की दौड़ में लगा हुआ है, तो इसके चांसेस डिमिनिश हो जाते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं होते। बिलाखिर हर इंसान को खुदा ने अकल दी है, वो इस पर सोचता है कि मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में। हर इंसान सोचता है मेरा मकसद क्या है, मेरा हदफ क्या है, मुझे यहीं ख़त्म हो जाना है कहीं और जाना है, मेरे आमाल आया ये सही है या ये सही है, ये ज़रूर सोचता है। और खुद खुदा कहता है कि तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँगा। तो अगर किसी ने भी ज़रा सा भी इस तरफ सफ़र किया तो उसकी फिर हिदायत खुदा की जानिब से होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे हिदायत के दरवाजे बंद हो चुके, ऐसा नहीं होता। के अंदर भी वो हमेशा हमेशा नहीं, हक की तलाश हमेशा, हक की तलाश हमेशा बाकी रहती है। देखिए एक बात है, आप अगर जो है वो किसी ने पूछा कि बेहतरीन अमल क्या है इमाम से, तो हमने कहा जितना जानते हो उस पर अमल करो, ठीक है। फर्ज करो कि एक शख्स है, उसने तहकीक शुरू की, उसको पता लगा कि नहीं दीन इस्लाम सही है, उसमें नमाज पढ़नी है। अभी वो जैसी भी नमाज शुरू कर ले, वो अगर वाकई सही मानों में हक को हासिल करना चाहता है, हक तक पहुँचना चाहता है, खुदा खुद उसके लिए राह खोल देगा। और ये ज़िंदगी इसी का नाम है, यानी तहकीक कभी ख़त्म नहीं होती है, ये तो हमेशा जारी रहती है। आप हक के भी लेयर्स हैं, आप एक लेयर क्रॉस करते हैं, दूसरी लेयर क्रॉस, फिर तीसरी लेयर, इसी तरीके से आप उतनी ज़्यादा खुदा से नज़दीक होते रहते हैं। इसी को लिखा उल्लाह कहते हैं, यही हदफ है इंसान।
मॉन्स में क्या करते थे?
हाँ, बस टर्मिनोलॉजीज में रूह और नफ्स एक ही चीज़ें हैं, और बाज हम यूँ कह लें कि चंद डायमेंशंस हैं जो हमारी मानवीय चीज़ है, उसके एक डायमेंशन नफ्स है और एक डायमेंशन रूह है। लेकिन बाज़ जगहों पर मसलन कुरान में बाज़ जगहों पर सेम मानों में भी इस्तेमाल हुआ है, नफ्स और नफ्स रूह के मानों में इस्तेमाल हुआ है, रूह नफ्स के मानों। लेकिन जो फ़लसफ़े में नफ्स एक डिफरेंट चीज़ है रूह से, वो एक बहुत ही टेक्निकल और मुल्ला सदरा वाली बातें हैं जो हम आपसे नहीं करते। कैसा खुदा
है, कैसा है
सिफात,
मतलब एक है दो है तीन है, तो मसला ये है। वैसे तो फिर कुरान में भी आगे सुन अभियान में अगर दो खुदा होते तो ये पहला पेज चल दी, लेकिन ये लॉजिक किसी को समझ में नहीं आते, मैं क्यों नहीं चल सकती, क्या मसला है, तो इस पर हमने बेस की कि हम आगे चलेंगे।
हाँ, इस पर इंशाल्लाह आगे ज़रूर बहस करें।
तो मैं इसलिए करके दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि तौहीद, नबूवत और क़यामत, हमारे जो सुन्नी भाई होते हैं तो हमारा तो वही नबूवत इमामत और तो हमने अदल को बाहर निकाल के रखा है तौहीद से, जबकि देखा जाए तो वो उसी भी तौहीद के अंदर ही आता है, अदल की है। तो वैसे तो हमने यही सुना है कि ब्रेड जो है उसकी सबसे गाली से जैसे सारी जो है काम नहीं होते, लेकिन ब्रेड जो है वो ज़्यादा फोकस होते हैं हमारे हिसाब में, तो अदल के अदल की जगह ब्रेड क्यों नहीं है, वो अदल की बाहर इसकी क्या
अदल का जो है ना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बहुत सारे इसके जवाब हैं, वो जब हम तौहीद को पूरा कंप्लीट करके इंशाल्लाह चंद सालों में तो जब अदल पे पहुंचेंगे, जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं तो साल लग जाएंगे, तो उसके बहुत सारे जवाब हैं, उसमें से एक जवाब ये है कि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि बनू उमैया के दौर में जो है और फिर उसके बाद बनो अब्बास में भी ये मबाहिस चल निकली कि खुदा के इज़्न के बग़ैर जो है वो पत्ता भी नहीं हिल सकता है, बस अगर एक ज़ालिम हुक्मरान है तो वो खुदा के इज़्न से, अगर यजीद हाकिम है तो इसमें हमारा तुम्हारा किसी का कोई कसूर नहीं है, और उसको बुरा भी नहीं करो कहो, यानी जबर के अकीदे को जो है वो नाफिस किया गया। तो फिर कुछ जो है उससे के मुकाबले पे अदलिया कहलाए, और इसलिए जो है वो मकतब तशैयों ने अदल को अपने बेसिक अकायद में रखा ताकि पता चल जाए कि हमारा उनसे डिफरेंस है इस मामले में। वो ख़त्म हो गया, बाकी भी हैं, इसको भी हम अगले दरस से बात में अलबत्ता मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि हम जब सिफात में आएंगे तो वो ये बात होगी कि जिस शय की कोई इल्लत नहीं होती तो उसको हमें मानना पड़ेगा कि वो हमेशा से, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नहीं होती और आ जाती है तो हम कहते थे पहले इल्लत मुहैया नहीं थी, अब कॉज आ गया तो अब ये इफ़ेक्ट आ गया, लेकिन जिसका कॉज ही नहीं है तो वो हमेशा से है, क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे हमेशा से तो हतमन फिर उसका कोई कॉज होगा जो पहले नहीं था और अब आ गया, अब ये इसलिए आ गया। ठीक है, एक चीज़ जब नहीं होती और आ जाती है इसका मतलब उसकी इल्लत है, बस जिसकी इल्लत नहीं है वो हमेशा से है, और जो हमेशा से है वो हमेशा रहेगी। ये कैसे है इंशाल्लाह अगले दुरुस्त। जी जी अजली और अबदी की। अलबत्ता इसको थोड़ा सा, जहाँ तक हमने लिमिट्स की बात की है, मुझे नहीं मालूम कि क्या लिमिट्स हैं वाकई, इस लिमिट्स की पर कोई गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई, मैं मेरा इल्म नाकिस है इस बारे में। अलबत्ता जो सुना है मैंने वो ये है कि सिर्फ एक डिफरेंस है खुदा और अहले बैत में, एक डिफरेंस है और वो है वाजिब और मुमकिन का। खुदा की कोई इल्लत नहीं है, खुदा खुद से है, खुदा भी राज़िक है, आइम्मा भी राज़िक है, खुदा खुद से राज़िक है, लेकिन आइम्मा खुदा की वजह से राज़िक है। यही डिफरेंस सबसे बड़ी बात है। बच्चों को हम मिसाल देते हैं कि एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल एक जैसे बना हुआ है, एक जैसी दीवारें हैं, एक जैसी खिड़कियां हैं, रंग एक जैसा है, फर्नीचर एक जैसा है, ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक, ठीक है। अब अगर हम चीज़ों को देखेंगे, कहेंगे यहाँ भी वही टेबल है, वहाँ भी वही टेबल है, यहाँ भी वही खिड़की है, वहाँ भी वही खिड़की है, ग्राउंड फ्लोर में भी यही कालीन है, फर्स्ट फ्लोर में भी वही कालीन है। अगर हम सिफात को देखेंगे तो शक में आ जाएंगे, लेकिन वजूद को देखो, वो ग्राउंड फ्लोर है, वो अपने ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम सिफात को देखेंगे, ये भी खल्क करते हैं, वो भी खल्क, ये भी मौत देते हैं, वो भी मौत देते हैं, ये भी रिस्क देते हैं, वो भी रिस्क देते हैं, ये भी जन्नत और जहन्नम का तायुन करेगा, वो भी जन्नत और जहन्नम का तायुन करेगा, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो वजूब व इम्कान का है, और वही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो ग्राउंड फ्लोर किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद से है, उसकी अपनी बुनियादें हैं, लेकिन पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर, अगर 100% मैं कहता हूँ, फर्ज कर लें, हमें नहीं मालूम, फर्ज कर लें 100% अफ़आल जो खुदा करता है वो आइम्मा करते हैं, तो भी कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाजिब है और वो मुमकिन है, यही डिफरेंस काफ़ी है खुदा को बंदों से जुदा करने। इसलिए आइम्मा की तालीमात में भी आइम्मा ने बारहा ये कहा है, हम उसके अब्द हैं, हम उसके गुलाम हैं, हम उसकी इबादत करते हैं। नहीं, हम कहते हैं कि ये दलील जो है ये हत्ता मुल्हिदों के लिए भी है, काफिरों के लिए भी है, बशर्ते कि वो उस मुश्किल में फंसे। और आप देखेंगे कि वो वहाँ वो भी इस बात का इकरार करते, सिर्फ उनको ये नहीं पता कि हाँ इस जैसे वो मुल्हिद का वाक़या है, देहरिये का वाक़या है, उसको ये नहीं पता था कि वो जिस ज़ात की तरफ मुतवज्जे होता है वही खुदा की ज़ात, वो इमाम ने बताया। तो वो भी मुतवज्जे सदरसद होते हैं, सदरसद मुतवज्जे होते हैं, लेकिन एक तो उस इस तरह मुतवज्जे होना और फिर उसका एतराफ करना, ये
इस्लामी माशरे से हटकर हम अकवाम आलम को देखते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको हमसे ऊपर रखे हुए हैं, और उसमें मुख्तलिफ अगर आप मुल्कों की मिसाल ले लें, नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले जाएँ, यूरोप की तरफ चले जाएँ, या इधर आ जाएँ जापानी साइड पर आ जाएँ, आप ये देखेंगे कि उन अकवाम ने तरक्की भी की है और उनकी एथिकल वैल्यूज, उनकी इदारे, उनके अखलाकियात, उनके लेन देन के मामले और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि वो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक ना उसके कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उनकी कोई रूल्स वहाँ से, तो ये वो क्या चीज़ है, कैसे ये चीज़ इन पर होती है कि ज़रूरत दीन जो है वो ज़रूरत दीन जो है वो उन माशरों के लिए नहीं है या किसी माशरे को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि हमारे को एक बचपन से कॉन्सेप्ट है कि इस्लामी माशरा ही एक बेहतरीन मतलब माशरा कायम हो सकता है और अदल और मसावात और तमाम चीज़ों को फॉलो करता है, जबकि प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं तो ये चीज़ नहीं।
इस पर शायद पिछले दुरूस में भी काफ़ी बात हो चुकी है ज़रूरत दीन के हवाले से, मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए एक बात तो पहली बात ये कि क्या वो माशरा या वो माशरे आइडियल हैं, मुकम्मल हैं, ये कोई भी नहीं कहता। उस माशरे में भी बहुत सारे नकायस हैं, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। अब वो क्या है, इस पर एक घंटा गुफ्तगू हो सकती है कि वो मॉरली लिहाज से, स्पिरिचुअली लिहाज से क्यों खला महसूस करते हैं, उनके पास कोई हदफ ज़िंदगी नहीं है और दस ये चीज़ें, बस बिलाकर ये आइडियल माशरा नहीं है। हाँ, उस माशरे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उसका हम एतराफ़ करना चाहिए। वो अच्छी चीज़ें क्यों हैं, सवाल ये है वो अच्छी चीज़ें क्यों हैं और हमारे यहाँ वो अच्छी चीज़ें क्यों नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो अच्छी चीज़ें वहाँ के सिस्टम के अच्छे होने की वजह से हैं। एक माशरा जब वाकई लोगों को इंसाफ मिलेगा वहाँ पे जराइम कम होंगे, जिस माशरे में वाकई इंसाफ नहीं मिलेगा वहाँ पे जराइम बढ़ेंगे। तो ये कोई उनकी को ऐसा नहीं है कि वही सिस्टम आप यहाँ ले आए तो वही अच्छा है यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और यहीं के लोगों को आप वहाँ भेज दें वो उसी सिस्टम में, यहाँ पे वही शख्स जो बेईमानी करता था, झूठ बोलता था, वहाँ पे वो नहीं करता, इसकी वजूहात क्या है। असल में दीन यही बताना चाहता है, लेकिन जब तक के आपकी बुनियादी, शायद पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ, बुनियादी मादी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, आप मानवियात पर नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों को अभी भूख लग रही होती, अगर ये दर्स जो है दोपहर को 2 बजे रखा जाता और आप लोग को सबको भूख लग रही होती तो आप ये दर्स नहीं समझ सकते, ठीक है। ये खुदा ने इंसान की खलकत इस पर, बस हमारी बेसिक मादी ज़रूरियात हैं। अगर जो है मेरे घर में मुझे 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होगी तो मैं मुतवज्जे नहीं होऊंगा इन मानवी चीज़ों की तरफ कि मेरा कोई बनाने वाला है, मेरा कोई खल्क करने वाला है, मैं तो अपनी ही रोटी पानी कमाने के चक्कर में लगा रहूँगा, सही। यहाँ पर जो मुश्किल है वो ये है कि यहाँ पे बेसिक नीड्स पूरी नहीं की गई, अब बेसिक नीड्स जो पूरी नहीं की गई इसलिए लोग सच नहीं बोलते, इसलिए लोग बेईमानी करते हैं। लेकिन किसी भी जगह पे अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ की फरावानी है तो आप उसको चुराएंगे नहीं। अगर ये जो रिफ्रेशमेंट है, अगर ये एक एक नहीं दिया जाता, फरावान यहाँ पर रख दिया जाता, ठीक है, आप कितने, आप दो पियेंगे, तीन पियेंगे, चार पियेंगे, बस कितने पी लेंगे। तो आदमी कब चुराता कब है, जब उसको मैसर नहीं होती चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैसर नहीं होती। हमारे माशरे का प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ बेसिक मादी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, हमें मेहनत के बाद भी वो सिला नहीं मिल रहा, लिहाजा हम करप्ट बनते हैं, हम बेईमानी करते हैं। इसमें सिस्टम का कसूर है। हाँ, ये सिस्टम क्यों नहीं हो रहा सही, मैं समझता हूँ इसमें भी उन बड़े लोगों का कसूर है। कहीं भी किसी भी सिस्टम में, एक घराने में दो बड़े भाई हैं, तीन छोटे भाई हैं, ठीक है ना, अगर बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों को सपोर्ट नहीं किया, सही लाइनों पे नहीं लगाया, घर के निज़ाम को सही से नहीं रखा, तो वो बिगड़ जाएंगे। तो ये बड़े लोगों का, जिन लोगों के पास वसाइल फरावान है, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वो महकूम रखना चाहते हैं कौमों को, ये उनकी जो है वो मादा परस्ती है, जिसकी वजह से ये मुश्किल है। तो एक तरीके से वो भी इसके जिम्मेदार हैं, और हम खुद तो हैं सबसे, जिस यानी हमारे ही लोग तो झुकते हैं तब वो फ़ायदा उठाते हैं ना। अगर हम में इस्तकलाल आ गया, हम में जो है जिस बिना पे हमने पाकिस्तान बनाया था कि हम मुस्तकिल रहना चाहते हैं, हमें किसी के अंडर किसी की हाकमियत में नहीं रहना है, हम खुदा की हाकमियत में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था। लेकिन आइंदा के जो है मुक्तदर अफराद ने इस फलसफे को छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। उस माशरे में जो है, जबकि मादी चीज़ें पूरी हैं, अब वो माशरा एक खला महसूस कर रहा है, वो मानवीय की तरफ मुतवज्जे हो रहा है, वो दीन की तरफ आ रहा है, वहाँ पे रिलीजन्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुनियादी चीज़ें पूरी हैं, अब सोचता है इंसान। लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान तबका है, वो कहता है अगर ये दीन की तरफ चले गए तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सही है, लिहाजा 9/11 करो, लिहाजा मसलन इस तरह के काम करो कि लोग दीन से बेजार हों, सेकुलरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश किया जाए। लेकिन अब इसकी बुनियादों में दरारें आ चुकी हैं, इसको कोई नहीं बचा सकता, ये इसको गिरना है, कुछ भी कर लें वो, कितने भी 9/11 कर लें और कितनी प्रोपेगेंडा मशीनरी और मीडिया और ये और वो सब लगा दें, लेकिन इंसानों को इस ये सफ़र को तय करना है। खुदा का वादा है ये कि एक दिन आएगा कि लयुज़हरा अला दीन कुल्ले, पूरी ज़मीन पर दीन जो है वो नाफिज हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा, और वही हम कहते हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर के मुकदमा के हों।
क्या हमारे पास कोई मिसाल है आइडियल माशरे की, अगर ऐसी है अभी के दौर में या थी तो कोई वो प्रिवेल क्यों नहीं कर पाया?
आइडियल मिसाल तो हमें किसी तारीख में नहीं मैसर आई, यानी हत्ता रसूल के दौर में भी हम कहते हैं आप पूरी तरीके से काम नहीं कर सके, इमाम अली भी पूरी तरीके से काम नहीं कर सके, हत्ता हम इनकलाब इस्लामी ईरान को भी कहते हैं कि उसको जिस अगर सही मौका मिलता तो इसकी बरकत हम और देखते, लेकिन फौरन ही जंग कर दी गई। जंग में जो है जो उस माशरे की वो तबका जो फ्रंट लाइन पे जो जिसका हम गम था दीन, वो उस जंग की तरफ चला गया और उसमें शहीद हुआ बहुत बड़ी तादाद में। तो जो इनकलाब के जो सही हामी थे, उसके लिए जान पेश करने वाले थे, वो वहाँ पर काम आ गए। अब पीछे कौन रह गए, या वो लोग जो इस निज़ाम के हामी नहीं हैं, या वो लोग जो हामी हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, घरों में ही बैठे रहना चाहते हैं, तो फिर भी मैं कहता हूँ यानी ये किसी मौजज़े से कम नहीं है कि आज भी जो है वो हुकूमत इस्लामी आज सिर्फ उसका मौजूद होना किसी मौजज़े से कम नहीं है आज के ज़माने में कि जहाँ
के साथ। लेकिन क्योंकि बात भी पूरा हो चुका है सवाल का, इंशाल्लाह इसको हम किसी यानी अगर ये शायद एक आदत भी हो सकता है बाकी रह जाए तो आप इसको वापस आके क्लियर करना चाहें नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर। सिर्फ कंक्लूजन के लिए ये कि इंतहा माजरत के साथ, क्योंकि फिर अगर हर एक अगर छोटा सवाल है तो आप बस अब इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का दो तीन कमेंट्स के साथ कंक्लूड करते हुए। भाई ने कहा कि इतनी सारी चीज़ें हैं दीन के अंदर तहबत है और लोग उसके अंदर बिखरते चले जाते हैं, तो कोई कैसे कितना बड़े ज़िंदगी के लिए, लेकिन यही चीज़ हम शायद दूसरी तरफ ऑब्जर्व कर रहे हैं। कम अज़ कम मैंने अभी तक अपनी जो भी लिमिटेड एजुकेशन है दुनियावी उसके अंदर कोई ऐसी बुक नहीं देखी या कोई ऐसा टॉपिक नहीं देखा जिसके ऊपर डिफरेंट थियोरीज एग्जिस्ट ना करती। मसलन ये कि आज भी जियोलॉजी के बुक्स के अंदर तेल के या हाइड्रोकार्बन के एग्जिस्टेंस की दोनों थियोरीज डिस्कस की जाती हैं, इसमें उसको एक में ऑर्गेनिक कहा जाता है एक में ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया जाता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है ना हम किसी को डिस्कार्ड कर रहे हैं ना थियोरीज के डिस्प्यूट की वजह से हम उन थियोरीज को पढ़ना छोड़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमें फ़ायदा कौन सी थियोरी पहुँचा रही है और जिस थियोरी से सबसे ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है तेल के निकलने के रेट में उस थियोरी को जो है हम फॉलो कर रहे हैं और उसको फर्दर एक्सप्लोर करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जहाँ तक वेस्ट का माशरा और हमारे माशरे का तकाबुल है तो दोनों केसेस अब भी कोई ढके छुपी बात नहीं है मीडिया एक्सेस की वजह से, दोनों के अंदर एक जगह अफरात है एक जगह तफरीत है। हमारे माशरों के अंदर अगर भूख है उनके माशरे में क्योंकि मादे को खुदा और गोल अगर कहना चाहें बना दिया गया तो उसके भी जो नेगेटिव नतज हैं मसलन ये कि उन्होंने समाजी इंसाफ को एक हद तक एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ मैं तुम सबके हकूक पूरे करेंगे तो हमारे भी पूरे होंगे, लेकिन जब उनको ये पता होता है कि एक मेट्रो ट्रेन के बाद दूसरी मेट्रो ट्रेन आ रही है एक मिनट के फासले के ऊपर तो वो डेफिनेटली खड़े रहते हैं, लेकिन जिस वक्त उनको ये पता चलता है कि अब इसके बाद नहीं आएगी या फ्यूल ख़त्म होने वाला है तो उसके बाद कोई ये नहीं करता कि मेरा 200 किलोमीटर दूर घर है तो मैं दूसरे को मौका दे दूँ उस पर चढ़ने के लिए। या पिछले दिनों कैनेडा में जैसे हुआ कि जिस वक्त आपकी ये बर्ड फ्लू की वैक्सीन ख़त्म होने लगी तो लोगों ने बच्चों का और औरतों का जो कि सबसे वीकेस्ट ग्रुप है और जिसको वो वैक्सीन सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए लिहाज नहीं किया, वहाँ पर भी मारपीट शुरू हो गई। उस दोनों तरफ उस माशरे के नुकसान अब हमारे सामने आना शुरू हो चुके हैं। मसलन अमेरिका के माशरे के अंदर दो चीज़ें हुई, उन्होंने जेंडर इक्वलिटी के नाम पे सबको बाहर निकाला, कंज्यूमरिज्म को फरोग दिया, माशरे को अपने स्प्लिट किया, सबको बाहर निकाला कि जी एक डॉलर कमाता है तो औरत भी बाहर निकल के कमाए तो दोनों के दो डॉलर हो जाएंगे। आज वो नतीजा फेस कर रहे हैं इस चीज़ का ऑलरेडी कि जब दोनों बाहर चले गए पीछे तरबियत करने वाला कोई नहीं रहा, तो आज उनकी स्टेटिस्टिक्स वेरी कर सकती हैं शायद मैं मुआवजा कर रहा हूँ लेकिन 30-40% आबादी अब उनकी सोशल सिक्योरिटी पर रहती है जो नेक्स्ट जनरेशन है, अब क्योंकि उसकी तरबियत नहीं हो सकी इसलिए वो जॉब करने की काबिल नहीं, तो वो 50-100% वाला फॉर्मूला उनका फेल हो गया। जापान के अंदर नेगेटिव बर्थ रेट है, हाईएस्ट सुसाइड रेट है जिसको टेक्नोलॉजी का शायद आप पक्का कह सकते हैं आज की दुनिया। तो सही है एक वक्त के एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर उनकी तरक्की हमको नज़र आती है, वो भी इस हवाले से कि जो हम चाहते हैं हम वो हमारे पास नहीं है जो उनके पास मौजूद है, लेकिन उसको एब्सोल्यूट तरक्की अब कोई भी आखिर को बालक शख्स डिक्लेयर नहीं कर सकता। इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का एक दुआ मोहम्मद ज़मान साहब।